कि साधक अपनी शक्ति से साधन करता है तो अपनी शक्ति की प्रधानता रहती है, और प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर साधन करता है तो वहाँ प्रभु की शक्ति की प्रधानता रहती है, और प्रभु की शक्ति की प्रधानता जब अपने मन में जस जाती है तो अपने में निर्बलता अनुभव नहीं होती। अपने में निर्बलता का अनुभव तभी तक होता है जब तक अपने बल को हम काम में लेते हैं, तब हमें निर्बलता मालूम देती है कि हमारे बल ने काम नहीं किया। हम अपने बल को काम में लेते ही नहीं, हम तो बल भगवान का ही रखते हैं, तो हमारी निर्बलता कैसी? वो निर्बलता होगी तो भगवान की होगी, भगवान की निर्बलता होती नहीं। इस बार भी बड़ी सुगमता से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सातवें अध्याय में आरंभ में ही भगवान कह देते हैं कि भैया मैं तेरे को वो समग्र ज्ञान कहूंगा जिसके बाद जानना बाकी नहीं रहेगा। बड़ी अच्छी बात, विशेष बात, विज्ञान से ज्ञान की बात कहूंगा। वहां भी मैया सत्य मना पार्थ योग नियोजन मदाश्रय, ये तीन बात कही। मेरे में आसक्ति हो मन की और मेरा ही आश्रय लिया जाए, योग किया जाए, उसका ही उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय यतन दिए। तो मेरा आश्रय लेकर यतन करते हैं, अंत में ये विदुर युक्त चेतसा, वे युक्त चेत वाले मेरे को जान जाते हैं। तो ये तीन बात में उपसंहार किया कि भगवान का ही तो आश्रय लिया, भगवान की प्राप्ति करना है, संसार के दुख से छुटकारा पाना है, इसके लिए केवल भगवान के चरणों का आश्रय ले। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेके यत्न करते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते बड़ी सुगमता से। तो माम आश्रय के लिए इस बार से एक भगवान के चरणों के आश्रय, उसका नाम जप करे, कीर्तन करे, हृदय से भरोसा उस परमात्मा का ही रखे। संसार का भरोसा नहीं, अपने बल का भी भरोसा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अपना बल न लगाया जाए, अपना मन न लगाया जाए, अपने जप न किया जाए, कीर्तन न किया जाए, भगवत आज्ञा पालन न की जाए, न करने में नहीं है, करता रहे सब कुछ, परंतु इसका बल अपने में न माने, मान इनके भरोसे में कर लूंगा, अपने उद्योग से कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा तो भगवान की कृपा से, तो फिर करें क्यों? हम भगवान की कृपा होगा तो फिर करें क्यों? तेरे को भाई करना तो निमित्त मात्र बहुत शब्द साधन। भगवान ने अर्जुन से भी कहा है कि तुम युद्ध कर, युद्ध करने माया हताश तुम चाहिए, मेरे मारे हुए तुम मार दे, मार दे ऐसा देखा क्यों मरता, क्योंकि निमित्त मात्र बन जाओ। तो निमित्त मात्र बनने के लिए हम करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान ने बाएं हाथ की अंगुली के नख के ऊपर पर्वत उदाहरण कर लिया, परंतु ग्वाल वालों से क्या सब लाठी लगाओ, लगाओ लाठी सब उठाओ उसको, तो उसने भी जोर लगाया, लाठी लगाई, जोर जोर लगाया, तो मन में आया तो ये लाला तो एक अंगुली लगाई, लाठी तो हमने लगाई, तो हमारे बल से पर्वत है जो उनका ठहरा हुआ है, ऐसा मन में भाव आते भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचा किया, अरे लाला दबे 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 लाला दब जाएगा, फिर जोर लगाओ, लाठी लगाओ जोर से, तो जोर से लाठी लगाना तो है, पर लाठी के बल से पर्वत खड़ा है ये अभिमान नहीं रहने देना उनका, नहीं तो क्यों गया नहीं जा, उनके बल का अभिमान मिटाने के लिए। और लाठी लगाने क्यों कहा कि तुम अपना जोर पूरा लगाओ, पर हमारे जोर से हो जाएगा ये बात नहीं। इस तरह से साधक को अपना जोर पूरा लगाना चाहिए, अपना ठीक तरह से जोर लगाओ, इतना बल लगाओ अच्छे तरह से, मन से, बुद्धि से, शरीर से ठीक उद्योग करे, अच्छे तरह से ठीक है जैसे, और होगा क्या? होगा तो भगवान की कृपा से, तो होने में तो भगवान के पास अपना मान ले तो अभिमान आ जाता है, और अभिमान को छोड़े नहीं करता तो आलस्य आ जाता है, आलस्य और प्रमाद ये भी नहीं आवे, अभिमान भी नहीं आवे, ऐसा ही बीच का रखता है वो, क्या भगवान का चरण आश्रय लेकर के अपना उद्योग करे, माम आश्रित यतन भी यतन करता है, यतन भी करना चाहिए, यतन करना चाहिए भगवान की चरणों के आश्रय से, यत्न करें क्यों? भगवान ने बल दिया है, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, विद्या दी है, उस दी हुई विद्या का उपयोग अच्छे से अच्छे करना है, ये भगवान की आज्ञा है, इस बात आज्ञा के अनुसार उनका काम ठीक से करना है। हम अपना उपयोग कर हम कर लेंगे ये भी अभिमान नहीं चाहिए, हम करें क्यों ये भी नहीं चाहिए, किंतु कर है बीच का रास्ता है ना, तो मनुष्य भगवान का भरोसा अगर आलसी हो जाता तो ठीक नहीं। लोग कहते भगवान का आलसी लेने से आलसी हो जाता, वो समझे नहीं तत्व को। आलसी भी नहीं होना है और उद्योग से हम कर लेंगे, अभिमान भी नहीं करना है। ये बीच का रास्ता है, ये वास्तव बहुत जल्दी सिद्धि करता है। अपना उत्साहपूर्वक बल लगाना है, अपने बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, वस्तुओं का, समय का सदुपयोग करना है। ऊंचे से ऊंचा भगवान ने दिया है ना, तो दिया है तो भगवान के भेंट कर देना। अपनी चीज क्या है, ये भी मिली हुई चीज है, तो मिली हुई भगवान को अर्पण कर देना, खूब लगा देना उसमें। पर इसलिए लगाने से यहाँ थोड़ा ही होगा, होगा तो उसी कृपा से, तो उसी कृपा से ही हो रहा, जितना जितना हो रहा उसी कृपा से हो रहा है। और हम बल लगाते हैं, समय लगाते हैं, सामग्री लगाते हैं, समझ लगाते हैं, ये किससे मिली, उसी से ही मिली, ये भी उसी से ही मिली हुई है। पर उसी से मिली हुई उसके चरणों में लगा दें, वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत राजी हो जाते हैं। जैसे बालक होता है छोटा, वो एक ताली भी लेकर के और पिताजी के हाथ में देता है तो पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं, ऊपर इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा ऐसे खुश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसने दिया है, अरे वो ताली लाया कहाँ से, अरे है किसका, उसी का तो घर है, उसी का ही बच्चा है, उसी की ताली, उसी की वस्तु है, उसे केवल कहने की चेष्टा मात्र से खुश हो जाते हैं। खुश होकर के हाथ ऊंचा कर इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा घर मेरे से बड़ा हो जाए, ऐसे भगवान के अर्पण करता है भगवान की चीज, तो भगवान कहते राम से अधिक राम करता था, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो जाता, इतना बड़ा हो अपनी स्थिति से हो गया, उसी की पर तो उसी समर्पण कर दी। लेकिन मुफ्त में बड़ा होता, मुफ्त में ही, अरे कुछ जोर लगाता बल लगाता है तो बल लगाना भी काम होता है, तो मजबूरी से जितना काम हो उतना काम होगा बल के अनुसार से, और कोई हाथ सीमा नहीं रहे तो भगवान खुशी कैसे होंगे। इस बात से अपने जितनी शक्ति है पूरी की पूरी लगा कर भगवान की ओर करते, महाराज ये बताओ ऐसे थे तुम जाओ भगवान खुश, और उस खुशी से अपना व्यय कल्याण। तो जो ज्ञान प्राप्त करके अध्यात्म उन्नति करते हैं, आध्यात्म उन्नति करते हैं और ब्रह्म को जान जाते हैं, भगवान कहते हैं मेरे चरणों का आश्रय लेकर के वो ब्रह्म भी जान जाएंगे, कर्म भी जान जाएंगे, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ समग्र रूप को जान जाएंगे, तो मेरी कृपा का आश्रय होगा ना। कृपा का आश्रय एक प्रवाह ऐसा आता है कि उसमें सब कुछ हो जाता है। रामायण में भी कहा है ना, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने निज सहज स्वरूप के लिए जो चलना है वो ज्ञान का मार्ग है। तो भगवान कहते हैं मेरे दर्शन होने से वो सहस को ज्ञान उसको स्वतः ही हो जाएगा, आपसे आप ही हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्म तत्व जो कृष्ण में हो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाएंगे, अध्यात्म को जान जाएंगे, अखिल कर्मों को जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो कौन सी चीज वो बाकी रहती है। अपने उद्योग से तो भाई जैसा उद्योग होगा उसके अनुसार चाहेगा तो उद्योग के अनुसार फल मिलेगा, जैसे जैसा उद्योग हो वैसी वैसी उन्नति होगी, वो ज्यादा कम हो तो उन्नति ज्यादा कम है, उधर रस्ता चलेगा। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनका तो सब काम भगवान की कृपा से मुफ्त में होता है। इस बात भगवान के चरणों का आश्रय रहकर एक आस हो, एक वर्ष, एक आस विश्वास, अपने निश्चिंत रहे और भगवान के आश्रय से काम करता रहे, पर करने में कमी न रहे, निश्चिंत रहे फल में, कब सिद्धि होगी, कैसे सिद्धि होगी, इस विषय में चिंता नहीं करे, पर अपना सब समय बड़ी सावधानी से लगाए, बड़ी सावधानी, बड़ी चतुराई से, ठीक तरह से, यथा योग जय शास्त्र की आज्ञा, उसे कमी किंचित मात्र भी नहीं लगे, पूरा उद्योग करे अपन, पूरा ऐसे करता है तो परमात्मा जान जाए। अब इसमें कोई शंका उठ बोल जरा मरण मोक्ष आय माम आश, इस बात बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुन जार, आज भी अभी अभी आज में भी रात्रि 12 बजे तक अभी अभी सुधर जा, जब हो राम को नाम जब, खास भगवान का होकर भगवान के नाम का जब, तुलसी तज कुसुमाज कुसंग का त्याग करके भगवान के नाम का जप कर, तो वो राम को नाम जो भगवान का हो करके भगवान के चरणों का आश्रय ले जाए। तो खास बात तो भगवान के आश्रय लेने की है और अपनी तरफ से अभिमान को छोड़ने की है, तत्परता को लेने की है, फिर का उसे नहीं है। राम
वचन तेईस छह
स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन है। तो स्थित प्रज्ञता में खास बात क्या है? तो दो बातें हैं। पहले बुद्धि का निश्चय होना है, फिर बुद्धि की स्थिरता होना है। तो बुद्धि का निश्चय पहले होता है, फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाने पर उस पुरुष को स्थिर बुद्धि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और पहले व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, वो निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। ये साधन का आधार है। जो कोई परमात्म तत्व को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ये जो मैंपन है, इस मैंपन को बदल दिया जाए तो साधन बहुत सुगम हो जाता है। साधन में कठिनता कब आती है? तो मैंपन को तो बदलते नहीं, भाव और क्रियाओं को बदलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा काम करना चाहते हैं, बुरा काम छोड़ना चाहते हैं, अच्छे भाव अपने अंतर्गत में अच्छे हो जाए उनको लाना चाहते हैं, दुर्गुण दुर्भाव उनको छोड़ना चाहते हैं। ऐसे तो साधक चेष्टा करते हैं, परंतु इन सबका मूल कारण जो अहम है ना, मैंपन, इसको है वही रखते हैं। इस वास्ते वर्ष लग जाते हैं, जीवन सफल नहीं होता, तो हताश हो जाते हैं और कहते हैं ये बात क्या है, कहाँ गलती रहती है, हम इतना जप भी करते हैं, ध्यान करते हैं, इतना अच्छा आचरण भी करते हैं, उपकार भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और वस्तु भी पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट देते भी नहीं, फिर भी हमारी स्थिति नहीं हो रही है, क्या कारण है? ऐसा संदेह हो जाता है, साधन ढिलाई आ जाती है, कई कई साधन छोड़ देते हैं, कभी ये काम होने का तो है ही नहीं, ऐसे ऐसे भी कुछ मिलेगा कि इस जन्म में तो ये होने का है नहीं, ऐसा हो जाता है। तो उसमें मूल कारण है अहं का परिवर्तन न होना, मैं हूं ना मैं, उस मैं में परिवर्तन नहीं लाते। साधन करते करते भी मैं में परिवर्तन आएगा और देरी लगेगी, बरस लग जाएंगे, जन्म लग जाए कोई पता नहीं है। और मैं को अगर बदल दिया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, तो साधन तेजी से चलता आप से आप चलता। वो मैं के परिवर्तन में बुद्धि का निश्चय मुख्य होता है। जिस स्थित प्रज्ञता की बात कही ना, ये स्थित प्रज्ञता तब होती है, बुद्धि का निश्चय होता है, बुद्धि का ये निश्चय होता है मैं के बदलने से। मैं का बदलना क्या है? कि मैं साधक हूँ, मेरे को साधन करना है। ये जो बीच में मन में रहता है, हम तो गृहस्थी हैं भाई, मैं तो गृहस्थी हूँ, ऐसे गृहस्थ होते ही गृहस्थ का काम तो सुचारू रूप से ठीक तरह से होगा और आठ पैर ही होगा, और साधन कभी कभी करेंगे और बढ़िया होगा भी नहीं, क्यों? हम कोई बाबा जी थोड़े ही है जो हरदम मारागिर घुमाते रहे, हम तो अग्रस्त है। ऐसा मैंपन में ग्रस्त का भाव रहने से वो साधन निरंतर उसका नहीं होता, हो नहीं होता, क्योंकि मेरे ग्रस्त और ग्रस्त निरंतर रहेगा, महीनों और वर्षों उम्र तक ग्रस्त रहेगा। तो ग्रस्त में है तो ग्रस्त का काम तत्परता से होगा, तो साधन में तत्परता से नहीं होगा। तो साधन कब होगा? निश्चय कर लिया कि परमात्मा की प्राप्ति हमें तो करना है, तो मैं साधक हूँ। तो साधन मात्र करने के लिए साधक हूँ, भक्ति मात्र करने के लिए मैं भक्त हूँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जिज्ञासु हूँ, ऐसे ही कर्मयोग से सिद्धि पाने वाले को जाएंगे, मैं तो कर्मयोगी हूँ, ऐसा हूँ मैं, ये भाव बदल दिया जाए। ये जो साधु हो जाते हैं, तो साधु होने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य अब साधु को करना चाहिए वही करना है, साधु को नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, क्योंकि मैं तो साधु हूँ, मैं तो साधु नहीं करना है। ऐसे साधक का भाव दृढ़ हो जाता है, निश्चय पक्का हो जाता है, किस मार्ग में ही चलना है, चाहे वो हो ऐसे बुद्धि का एक निश्चय होता है। इस वास्ते भगवद गीता में ऐसा ते वेता सांख्य बुद्धि युगे प्रमाण सुनो बुद्धा युग तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रायसी। ये 39वां श्लोक होते हैं। 38वां श्लोक तक भगवान ने विवेचन किया तो बुद्धि शब्द नहीं दिया, बुद्धि का बात शब्द नहीं आया 38 श्लोकों तक। एक प्रज्ञावादा भाषा में बुद्धि के संबंध में नहीं आया है, ऐसे एक शब्द आया एक बार ही प्रज्ञावादा से बात से। निश्चय वाली बुद्धि अब वो बात नहीं आई है। यहाँ कहते ऐसा ते बेटा सांख्य बुद्धि, सांख्य में तो बुद्धि कह दी, अब इसकी योग के विषय में सुनो। तो सांख्य के विषय में क्या गया कि आत्मानात्मा क्या है, शरीर और शरीरी क्या चीज है, इन दोनों का विवेचन किया है। ये तो 38वां श्लोक तो कह दो, 30वां श्लोक तो 8 श्लोकों में छात्र धर्म का वर्णन है। अब यहाँ से योग के विषय में बुद्धि सुनो, तो योग के विषय में बुद्धि सुनो कहकर योग की 4 प्रशंसा करी। ऐसी प्रशंसा के बाद में ये बात आई कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका, इसमें निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। एक होती है क्या कि हमें तो परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, एक निश्चय कर लिया पक्का। जैसे लोभी आदमी धन कमाता है तो धन का नुकसान नहीं सह सकता, और धन के लिए झूठ कपट बेईमानी जा सदी कर दी तो कोई बात नहीं। माँ बाप भाई बंधुओं से लड़ाई कर कोई विश्वसनीय दवाई की लड़ाई हो जाए तो हो जाओ, कोई आदमी धन कमाना है, धन में एक धुन लग जाती है तो दूसरी बातों को समझता ही नहीं, कहते तो कानून और नष्ट हो जाएगा कि हो जाए तो क्या हो जाए तो हो जाएगा क्या, धन तो कमा ही लो, ऐसे धुन होती है। तो वो एक निश्चय हो गया, परंतु ये संसार का एक निश्चय ठहरता नहीं। क्यों नाशवान है, धनी नाशवान है, पढ़ाई में लगे पढ़ाई भी नाशवान है, मान पढ़ाई में लगे मान पढ़ाई भी नाशवान है। ये संसार में निश्चय एक नहीं रहता, ये तो पड़ेगा दृष्टांत के लिए एक बात पता ही आपको, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय हो जाएगी, ये चलेगा नहीं, ये तो सिद्ध होगा, दूसरा निश्चय सिद्ध नहीं होगा, ये तो सिद्ध होगा ही क्योंकि ये तत्व है। तो परमात्मा को प्राप्त करना है, अब भाई इसमें हानि नहीं सह सकते, थोड़ी बहुत भी गलती हम नहीं सह सकते। जैसे रुपयों का लोग भी एक पैसा का नुकसान भी स्वयं करता नहीं सह नहीं सकता, कणसस्तरी विद्या वर्धन की एक कण कण का त्याग, एक कण कण का बटोर कण का बटोर करके रुपया इकट्ठा करता है। ऐसी एक क्षण भी एक क्रिया भी हमारी साधन से वृद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। जिससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी हो जाए वो हमें काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, चाहे मार कर जाए मस्त उड़ जाए तो परवाह नहीं करते, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें। दूसरे लोग क्या करते हैं इस पर देखता ही नहीं, दूसरे साधु क्या करते हैं, साधक क्या करते हैं, इतने दिनों से सत्संग करते हुए उन्नति नहीं हुई, वे क्या करते हैं, आंख उजागर नहीं देखता जिसको उन्नति करनी है, और ये देखता रहे तो उन्नति नहीं होगी, वो ढिलाई आती रहेगी अपने में। जब ये साधु अग्री नहीं करता हम क्या है, इतना वर्षों से नहीं हुआ तो हमारे कैसे होगा, ये महान हानिकारक है, बड़ी भारी बात देने वाली चीज है। तो सच्ची जिसके लगन होती है इन बातों को देखता नहीं, तो ये भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण को बैठ के अपना भवन बुहार अपना काम करना है। वो तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक निश्चय हो गया एक। अब इसमें बाधा क्या है तो भगवान ने 44वें श्लोक में बताया कि भोगों की सूर्य पर एक तो संसार का सुख लेना और एक चीजों का रुपयों का संग्रह करना, ये दो की इच्छा हो जाती है फिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा की प्राप्ति करना है ये निश्चय उसके टिक नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, सुख भोगना है आराम लेना है हमें और संग्रह करना है, ये चीज चाहिए हमारे। वो व्यवसाय में बुद्धि समाधो न भी दिए थे, परमात्मा में एक बुद्धि उसकी नहीं होती, नहीं हो ही नहीं। तो जो परमाणु तत्व की प्राप्ति चाहता है वो भोग बुद्धि और सुख बुद्धि न रहे, भोग भोगना और चीज है, भोग बुद्धि और चीज है, और संग्रह होना और चीज है, संग्रह बुद्धि और चीज है। मन में रहता है सुख ले और सुख भोगता राजी होता है वो साधन नहीं कर सकता।
सुबह भोगड़ा ही नहीं है, रोटी खड़ा खा रहा, वो भी दवाई की तरह सेवन कर रहा, कपड़ा खा दिया, जैसे बीमारी में कोई थोड़ा भूंजी हो तो पट्टी बांधी तो बांध दी पट्टी। इसमें सुंदरता स्वाद बना ये नहीं रहता, ये तो निर्वाह मात्र करना है, हमें तो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। तो ऐसे चीज वस्तु भी आ जाए, कोई अनुकूल पदार्थ भी आ जाए तो उसका सेवन भी कर ले, परंतु बुद्धि उसी नहीं रहती, ये सुख खाना है, ये संग्रह करना है, हमारा यश बात बढ़ाई करनी है, आदर पाना है, समाज में कुछ नाम लेना है, हमारे कुछ स्थान हो जाए, ये उसी आती भीतर से। हमें तो एक परमाणु तत्व को प्राप्त करना है। एक बात बीच में याद आ गई, ये परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चय होने पर ये संसार की चीजें आप से आप आती है जबरदस्ती, धन भी आएगा, भोग भी आएगा, मान भी आएगा, बढ़ाई भी आएगी, आराम भी आएगा, ये सब तरह की चीजें नाना करते हुए आवेगी, पीछे पड़ेगी, पर सावधान रहेगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इन्हें दिखने आने पर हमें रीझना नहीं है, इनमें फंसना नहीं है। सबसे पहले परमात्मा की तरफ चलने पर संसार पीछे दौड़ता है, जैसे सूर्य के सामने मुख करके हम दौड़ते हैं तो छाया पीछे दौड़ती है, और छाया के पीछे दौड़ते तो कितने ही जोर से दौड़ो छाया अगर भाग जाएगी, ऐसे संसार के पीछे दौड़ने से नजीक आएंगे नहीं, और परमात्मा को भी सूर्य उसकी तरफ दौड़ोगे तो माया पीछे दौड़ेगी आएगी, किस तरह से हमारे को स्वीकार करोगे, हमें स्वीकार नहीं करना, हमें तो परमाणु की प्राप्ति करना है। तो ये बीच में आ गई थोड़ा लोभ देने के लिए, अपने लोभ है बड़ा खतरनाक, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहोगे तो संसार की सुविधा आप साथ आवेगी, पर लेना नहीं है, भोगना नहीं है, इसमें फंस जाओ तो फिर वही दृष्टि वाली बुद्धि है तो वही नहीं रहेगी, विचलित हो जाओगे। तो वो व्यवसायत्मक बुद्धि एक हो जाएगी परमात्मा की प्राप्ति तो क्या होगा, उसके लक्षण क्या होंगे, उन लक्षणों का वर्णन करते हुए पहला ही श्लोक है ये 55वां श्लोक, प्रजापति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनोगत जो कामनाएं हैं सुख भोगने की और संग्रह करने की, जितनी भी कामनाएं हैं, मान है, आदर है, बढ़ाई है, आराम है, भोग है, सुख है, धन संपत्ति वैभव है, विद्या बुद्धि आदि विद्यादि का संग्रह है, कुछ शक्तियों का संग्रह है, ये सब भोग सबसे प्रजाति यदा कामान संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह से निश्चेषता से त्याग कर देता है बिल्कुल, तो फिर उसे आधार क्या रहता है, आत्मनि एव आत्म, अपने से ही अपने आप में तुष्ट रहता है, उसकी तुष्टि के लिए कोई बाहर की चीजें नहीं होती, कोई धन से संतोष होगा, मान से संतोष होगा, वाह वाह से संतोष होगा, आराम से संतोष होगा, आप बढ़ाई से वाह वाह से संतोष होगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, सब कामनाएं बिल्कुल मिल जाएंगे, आत्मनि एव आत्म संतोष, अपने आप में ही केवल आत्म संतोष है, उस समय में स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो निश्चय कहने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि स्थिर हो गई, अब बुद्धि इधर उधर नहीं होगी, अब हो रहेगा कोई कारण नहीं, क्योंकि बुद्धि के विजुद्ध करने वाली तो ये कामनाएं है, इंद्रियाणां विचरतां यन मनोनुविधीयते, इंद्रिया में आचरण करते विचरण करते हुए जिस एक इंद्रिय के साथ मन लग जाता है तदस्य हति प्रज्ञा, वो प्रज्ञा और लग जाता है, किसी एक विषय में थोड़ा सा लग जाए फिर मौजूद फिर सब काम हो जाए खत्म हो जाए, थोड़ा सा आगे क्या है संसार का थोड़ा यश ले ले थोड़ा रस ले ले फिर तो पतन हो जाएगा, ये मनोरण भी दिए तद ऐसे वह एक भी इंद्रिय से प्रज्ञा को हो जाए बुद्धि स्थिर नहीं, बुद्धि स्थिर है उसके ऊपर दृढ़ता से रहे कि हमें तो यही काम करना है, भले दूसरा कुछ भी करे न करे, सुख पावे दुख पावे, लोग निंदा करे प्रशंसा करे, धन आ जाए धन चला जाए, शरीर बीमार हो जाए चाहे ठीक रहे कुछ भी रहे, हमें तो इस बारे में चलना है यही करना है काम से, कल मरते हुए आज मर जाए तो परवाह नहीं, काम यही करना, ऐसा पक्का विचार होने से उस तक प्रति है। अब इसमें शंका हो गई ये बड़ी भारी कसास रहती है साथी की, बड़ी भारी मामूली तो इसी कारण से कहते क्या कहते हैं लोग नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता, भोग नहीं छूटते, क्या करें छूटता नहीं, क्या क्या करें छूट जाते ही धीरे से एक विचार है ही नहीं, मन लागो बहुमारी तलबा टूटा तन किसनता से कैसे करे श्रद्धाहीन भजन, मन लागो बहु मारे बहु साकार अंदाज बुद्धि अब व्यवसाय गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास ज्यादा लग जाए मानो मैं पण बदल दो बुद्धि बदल जा रही बुद्धि में से मैं पण बदल जाएगा एक बुद्धि वाले से मैं पण बदल जाएगा एक ही काम करना है और मैं पण बदलने से तो सब क्रिया बदल जाती है नींद बन जाता है तो बस धीरे धीरे चलेगा धीरे बैठेगा स्वर हो गया कि मैं तो दूल्हा हूँ तेज बन गया मैं बदल गया सब क्रिया बदल जाएगी तो थोड़ी बहुत कोई ना ऐसे नहीं करना चाहिए दिन ऐसे नहीं जाता अच्छा सच मान लिया
खुद से बदल गया
हाँ जी
खुद से बदल गई मैं
हाँ
हाँ
बुद्धि को निश्चय तो मैं बदलने से बुद्धि बदल ही जाएगी निश्चय एक ही हो जाएगा दो रहेगा ही नहीं और बुद्धि का एक निश्चय होने से मैं बदल जाएगा इसका सत्रह तत्व का माना है मन बुद्धि चित्र अहंकार प्यार न मान कर दो ही माना मन और बुद्धि अहंकार चित्र इसके अंतर्गत जाता बुद्धि के अंतर्गत एक पक्का निश्चय कर लो बातों से काम नहीं होगा दुख आने पर संताप आने पर तरह तरह विरुद्ध अवस्था आने पर आनंद खिलेगा खुशी आएगी बुखार में खुशी आवेगी अपमान में खुशी आवेगी निंदा में खुशी आवेगी समझाने में खुशी आवेगी मस्त
वचन संवत 2037 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी मंगलवार को प्रातः काल हुआ तारीख 24/6
सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि चेष्टिता भगवान का भगवद्गीता में कहना है उसमें सार बात है समता गीता भर में अगर देखा जाए तो गीता किसको आदर देती है तो एक समता को आदर देती है समता का स्वरूप क्या है वो यहाँ कहती है कि समता का स्वरूप ये सांग साम्य स्थितं मन जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन पुरुषों ने इहैव स्वर्ग जीता यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया मानो समता में स्थिति होने से संसार पर विजय हो गई अब परमात्म तत्व की प्राप्ति उनको हो चुकी पूर्णता उसको दे दी भगवान ने एक समता आ गई आप तत्व की हो गए स्थित्व की हो गए गुणातीत हो गए भगवत भक्त हो गए मुक्त हो गए सब कुछ हो गए और लक्षण सब आ गया समता नहीं आई तो कुछ नहीं आया इतनी बड़ी समता की महिमा वो क्या ये सांग साम्य स्थितं मनः जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो मन का तात्पर्य है कि जो हमारे मन में ऐसी आती ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये ही विषमता है और ये ही कामना है और ये ही बंधन है तो साम्यावस्था में स्थित होना क्या जो हो जाए उसी में ही पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है ऐसे हो जाए तो मौज ऐसे हो जाए तो भी मौज मन में कोई पकड़ नहीं ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे अपने व्यक्ति के लिए अपने लिए कुछ ऐसा संकल्प नहीं शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार सबका आचरण होना चाहिए और शास्त्र से निषिद्ध आचरण नहीं होना चाहिए ये बात तो शास्त्रों की है वो उस व्यक्ति की नहीं है इसको कामना भी नहीं कहते इसको सद्भावों का प्रचार सदाचारों का प्रचार लोग कहते हैं आचार प्रभु धर्म, धर्म मात्र इस आचरण से ही पैदा होता है। सद्गुण सदाचार से धर्म होता है और धर्म के प्रभु परमात्मा है, इस वास्ते आचरण अच्छा होना ही चाहिए सबका। तो आत्मा के लिए बात नहीं है, ये है फल के लिए। ऐसा सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना हमारे पर घटनी चाहिए, ऐसी हमारे मन विरुद्ध घटना नहीं घटनी चाहिए। ये सब फल को लेकर के है, कर्म को लेकर नहीं। कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये अपने लिए भी अकर्तव्य को नहीं करना है, कर्तव्य कर्मों का ही आचरण करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, कर्तव्याकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तो इसमें जो दो बात है वो दोष नहीं है, वो तो वास्तव में गुण है, उससे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है। परंतु हमें जो फल मिलता है हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो आकर के परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में समता रहनी चाहिए मन में। अनुकूल से अनुकूल पदार्थ मिले, व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, घटना हो जाए, परिस्थिति आ जाए अनुकूल से अनुकूल, तो उसमें राग नहीं होता, आसक्ति खिंचाव नहीं होना चाहिए। और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल वस्तु मिले, प्रतिकूल से प्रतिकूल पुरुष मिले, प्रतिकूल से प्रतिकूल हमारी घटना हो, जैसे बिना कारण अपमान हो जाए, हमारी निंदा हो जाए, बुखार आ जाए, अथवा कोई दुख दे दे, ऐसे अचानक प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो मन में वहां खटपट नहीं होनी चाहिए, मन में दुख नहीं होना चाहिए, संताप नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बाहर की परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती और जाती रहती है। भगवान ने कहा अगमा पायो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व, ये आने जाने वाले इनको तुम सह लो। सहना क्या है? न प्रतिष्ठित प्रियम प्राप्ति है, नो विजित प्राप्ति चा प्रियम। प्रिय से प्रिय वस्तु परिस्थिति मिले तो हर्षित नहीं हो, और अप्रिय से अप्रिय मिले तो हलचल न हो, उद्वेग न हो। स्थिर बुद्धि असमूढ़ हो, बुद्धि स्थिर हो, असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है, वो परमात्मा में स्थित हो गया। तो यही उत्तेजित स्वर्गो ये सांग साम्य स्थितंग माना निर्दोषं ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि देशता। तो जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यही वाम जीवित अवस्था में संसार मात्र पर विजय कर ली। दूसरों को हराकर विजय करना है, वो विजय नहीं है, वो तो हार है, हार पराजित होना है। वो दूसरों पर विजय करेगा तो अस्त्र शस्त्र से करेगा, विद्या बुद्धि से करेगा, सेना आदि से करेगा, बल से करेगा। तो जिससे करेगा उसका दास हो गया ना। विद्या के द्वारा विजय करेगा तो पहले विद्या का गुलाम हो गया, वो फौज के द्वारा विजय करेगा तो फौज की आवश्यकता पड़ी तो फौज से छोटा उसका गुलाम हो ही गया। धन के द्वारा विजय करेगा तो धन का गुलाम हो ही गया। बल से दूसरों पर विजय करेगा तो बल का गुलाम हो गया, तो वो पहले ही गुलाम हो गया, वो क्या विजय करेगा? उसका विजय विजय नहीं है। विजय क्या है? मन में हमारी किसी की आवश्यकता नहीं, बल नहीं, बुद्धि विद्या आवश्यकता, फौज पलटन किसी की जरूरत नहीं है हमारे मन में। हमारे मन में तो आनंद वैसा का वैसा ही बना है हर एक परिस्थिति में। और परिस्थिति बदल की ये है संसार। संसार क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता, यही संसार और कुछ नहीं। संसार यही है पूरा का पूरा। तो जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, यही उत्तेजित स्वर्ग, यही वह जीवित अवस्था में ही यहाँ ही संसार को जीत गया। यदि कैसे जीत गए वे संसार को? कि निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा है वो निर्दोष और सम है। परमात्मा में दोष नहीं है, परमात्मा में विषमता नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के और भगवान समान है, समान ही व्यापक है, समान ही कृपा है, समान ही हितैषिता है। दुष्टों को नरकों में डालते हैं तो भी अहित नहीं करते। अरिहु अनभल कीनन रामू, राम जी ने भेरी का अनभल नहीं किया, रामू को मार दिया मैंने, अनभल नहीं किया, वैकुंठ भेजा। एक रामायण में ऐसा भी आता है, रावण मरते ने कहा, मरते हुए रावण ने कहा कि राम तुम समझ दो विजय हमारी हुई, तुम्हारी विजय नहीं, विजय मेरी हुई है, क्योंकि मेरे जब तक प्राण रहे तुम्हारे को लंका में पैर नहीं रखने दिया, और तुम जीते जी हो तुम्हारे वैकुंठ में जा रहा हूँ, फिर भी देखो विजय मेरी हुई। तो राम जी पराजित करना चाहते ही नहीं, रावण को नहीं मारते हैं, दुष्टता को मारते हैं, रावण को वही मारते हैं, इस वास्ते उनके द्वारा भलाई भला होता है, तो वो समान है सब पर, चाहे भगवान के अनुकूल आचरण करे चाहे प्रतिकूल, समान है। तो निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म भी समान, और जो सगुण अवतार लेकर आज तो भी समान, वो समान है परमात्मा। तो जिनका मन समता में स्थित हो गया, इससे सिद्ध हुआ कि तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, इससे सिद्ध हुआ कि वे ब्रह्म में ही स्थित है। अगर ब्रह्म में स्थित न होते, शरीर में स्थित होते, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का उन पर असर पड़ता, और मन में समता आ गई, मन निर्दोष हो गया, तो वे स्वयं परमात्मा में स्थित है, ये पहचान है उनकी। तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, इस हेतु से वे ब्रह्म में ही स्थित है, अटल ब्रह्म, कभी विषमता आती ही नहीं। सर्गे भी नो बजायेंदे प्रलय न्यथंती, जब महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी उनकी व्यथा नहीं होती, सब दुनिया मात्र लीन हो जाए समझ जाए तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर में स्थित है ही नहीं, वो स्थिति परमात्मा में है। तो उसकी पहचान क्या है, परमात्मा में स्थिति वाले की पहचान, ये सांग साम्य स्थितं मनः, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, मन में समता आ गई, हरदम प्रसन्नता, ये समान स्थिति है। आचरणों में वो कुछ भी कर ले, कैसा भी कह दे, आवश्यकता अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार, वो सब काम करता हुआ भी सर्वथा वर्तमान उपरी सहयोगी नहीं वर्तते। सर्वभूत स्थिति यो माम भजते गुमाश्रित, सबके साथ एकता में स्थित है, तो सर्वथा वर्तमान हो भी सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे में ही है। तस्मात ब्रह्म ही जैसे था, इस बात में ब्रह्म में स्थित है, कौन ये सर्गो, ये साम्य सतंग मन, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, तो तस्मात ब्रह्म ही जैसे था, क्योंकि निर्दोष में समम ब्रह्म, और समत्व योग उच्यते, गीता इस समता का नाम योग कहती। बहुत से भाई प्राय करके शिकायत करते हैं कि हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता, तो परमात्मा में लग जाना, इसको गीता इतना ऊंचा दर्जा नहीं देती जितना ऊंचा दर्जा मन की समता को देती। मन में समता आ जाए बस ठीक है, पूर्ण हो गया, राग द्वेष हरक शोक न हो, प्रिया प्रिय की प्राप्ति होने पर कोई फर्क न पड़े, हरदम ऐसा ही रहे, क्योंकि ये तो आता रहता है, वायु ऐसे आई वैसे आई, अनुकूलता बता आता जाता रहता है, और उसके थपेड़े में इधर उधर हो गए तो बड़े बड़े साधन हुए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, और ये वैसे ही रहा तो वैसे ही है, और ये समता है। एक बात और याद आ गई, इस समता की प्राप्ति होना बहुत सुगम है, महिमा जिसकी इतनी है उस महिमा की प्राप्ति होना बहुत सुगम, आप कृपा करके मान लें। एक बात बताता हूं, आप वो मान लें तो उसकी प्राप्ति सुगम है, क्यों कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो उसको प्राप्त करना क्या कठिन है, जो अभी चीज नहीं है उसे प्राप्त करने में उद्योग करना पड़ता है, अभी है यहाँ है हमारे में है, हमारे हैं सब देश में सब काल में, सब देश में तो यहाँ भी है, सब काल में तो अभी भी है, सब में है तो हमारे में भी है, सबके हैं तो हमारे ही हैं, ऐसे परमात्मा उसे प्राप्त करने में क्या जोर है, वो तो अपना है। तो बहुत सुगम बताए, बहुत सुगम, बहुत सुगम, ध्यान देकर सुने आप लोग, आपके नफा हुआ सुना कि अमुक जगह इतना हजार रुपयों का नफा हो गया, दूसरा सुना कि अमुक जगह इतने हजार का तुम्हारा नुकसान हो गया, क्रांति की दुकान में तो नफा हो गया, हैदराबादी दुकान में नुकसान हो गया। तो ये दो बात सुनी, दो बात सुनी तो आप तो यहीं बैठे हैं। अब नफे की बात सुनी और नुकसान की बात सुनी, तो नफे की बात सुनते ही खुशी आ गई, नुकसान की बात सुने ये दुख हो गया। तो ये सुख और दुख दो हुए ना, तो दो बातें सुनने से दो हुई बात। अब ध्यान देना, नफे की बात सुनी तब भी आप थे कि नहीं, और नुकसान की बात सुनी तो भी आप थे कि नहीं। तो ये आप स्वीकार करो कि मैं तो था ही। नफे की बात सुनते ही आप वैसे के वैसे थे, और नुकसान की बात सुनने पर आप वैसे के वैसे थे, और नफा और नुकसान की जो बातें सुनी उन बातों से जो ज्ञान हुआ, जानना मात्र, नफे का ज्ञान और नुकसान का ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क है? नफे और नुकसान में बड़ा भारी फर्क, परंतु दोनों का ज्ञान हुआ क्या फर्क हुआ? और ज्ञान में फर्क नहीं तो जानने वाले में क्या फर्क हुआ? वो आप जानने वाले हो, उसमें स्वरूप में उसमें स्थित हो, तो मैं तो यही हूँ, ऐसे आप स्थित हो जाओ, आपको क्षमता मिल जाएगी। इतनी बात है। और आप ना तो अपने में स्थित होते हैं, ना ज्ञान में स्थित होते हैं, आप नफे में जाकर स्थित होते हैं, नुकसान में जाकर स्थित होते हैं, तो विषमता आती है। तो विषमता लाने में तो कितना दूर जाना पड़े? आप अपना ज्ञान और ज्ञान का विषय ये उसमें जाकर डेरा लगाओ, तब आप में विषमता आएगी। और न उसमें लगाव दे रहा, न ज्ञान में लगाव, उसमें न लगा ज्ञान में अथवा ज्ञाता में, खुद में लगाते हैं तो सुख दुख में समान हो जाएंगे। समदुख सुख स्वस्थ, समदुख सुख कब होगा? स्वस्थ स्व में स्थित हो जाएगा तो सुख दुख में समान होगा। और स्व में स्थित न होकर के जो बदलता है उसमें स्थित रहोगे, कभी क्षमता नहीं रहेगी, विषमता ही रहेगी सदा। अब इसमें बताइए क्या कठिनता है? आप समता में स्थित हैं, स्वतः सिद्ध समता है, इसमें कोई अर्जुन हो बोलो। अभी आपके मन में वैसी स्थिति में आवे, हलचल हो जाए तो हलचल होते हुए हलचल को देखोगी, हलचल होती है तो मन में होती है, मैं तो वही हूँ, ऐसे आप स्थित हो जाओ, फिर हलचल जाए परवाह नहीं, हलचल की, मैं तो वही हूँ। जो अनुकूल परिस्थिति को देखने वाला वही प्रतिकूल परिस्थिति देखने वाला हूँ, और जो परिस्थिति प्रतिकूल है उसको देखने वाला हूँ वही अनुकूल परिस्थिति देखने वाला हूँ, मेरे में क्या फर्क पड़ा? थोड़ा विचार कर, अपने में क्या फर्क पड़ा? और अपने में अगर फर्क पड़ा तो नफे के समय जो सुनने वाला था, नुकसान के समय सुनने वाला वो नहीं था, तो दोनों का ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि नफे के सुनने वाले आप दूजे थे और नुकसान को सुनने वाले आप दूजे थे, ऐसा कोई मान नहीं सकता, नहीं दोनों का ज्ञान नहीं होगा, एक ही आप हो। तो आप एक ही रहे तो आप तो सम ही रहे, आपकी समावस्था ये है। पुरुष सुख दुखानाम भोगतृत्व हेतु, पुरुष है वो सुख दुख के भोगने में हेतु होता है, सुख दुख भोगता कब है? कि पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित पुरुष भोगता है, प्रकृति में स्थित न हो तो सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ स्व में सिद्ध हो गया, अपने आप में सिद्ध हो गया। तो अपने आप में सिद्ध होते ही आप में कोई बाधा है ही नहीं, और आप प्रकृति में जाकर सिद्ध हो तो बाधा से बस होते नहीं, क्योंकि वो एक समान रहने वाली है ही नहीं, हरदम बदलती है, उसमें स्थित न रह करके वो न बदलने वाले आप अपने आप में स्थित रहे। अभी न अनुभव हो तो परवाह नहीं, बात ये है इतनी मिल जाए किसी जिज्ञासु को, मैं कहता हूँ बहुत निहाल हो जाओ, समझे कि निहाल ही हो गए, ऐसी विलक्षण बात है, इतनी ये मूल्यवान बात है। अब इसका आदर करना पकड़ना आपके हाथ की बात है, आप स्वतंत्र हैं, करें न करें, लाचारी क्या करें। इसमें शंका बताओ, अड़चन बताओ, कोई सी अड़चन बोलो, अगर ही नहीं। यही उदयदित स्वर्ग हो, मन की उन्मुक्त हो गए, यही उदयदित स्वर्ग हो, ये सांग सामने माना निर्दोष है संबंध में। तो अपने आप में स्थित होते ही आप में कोई बाधा है ही नहीं, और आप प्रगति में जाकर स्थित हो तो बाधा से बच सकोगे नहीं कभी भी, ब्रह्मा जी भी नहीं बच सकती, वहां से दौड़ने पर तो हल जल होगी, क्योंकि वो एक समान रहने वाली है ही नहीं, हरदम बदलती है, उसमें स्थित न रह करके और न बदलने वाले आप अपने आप में स्थित रहे। अभी न अनुभव तो परवाह नहीं, बात ये है जितनी मिल जाए किसी जिज्ञासु को ना कि बहुत निहाल हो जाओ, समझे कि निहाल ही हो गए, ऐसी विलक्षण बात है, इतनी ये मूल्यवान बात है। अब इसका आदर करना पकड़ना आपके हाथ की बात है, आप स्वतंत्र है, करें न करें लाचारी क्या करें। अब बताओ अड़चन बताओ, कोई अड़चन बोलो, अगर नहीं यही उदय स्वर्ग हो, मन जी उन्मुक्त हो गए, यही उदय स्वर्ग हो, ये सांग सामने से तरह माना निर्दोष है, ये समान ब्रह्म तस्मात ब्रह्म नहीं दे देता है। मन में विषमता आ जाए, हलचल आ जाए तो क्या करो, इसमें ये क्या करे आदमी, तो मन में हलचल आ जाए तो हलचल को देखने वाले बन जाओ, मन के साथ मत मिलो। आ एक बात यू की खास, मन में हलचल हो रहे देखते पौने दो, अभी ये स्थिति नहीं हुई कि मन में साम्य अवस्था होगी, नहीं हुई कोई परवाह नहीं, पर तो आप देखो कि मन में विषमता है उसको देख रहे हो, बस फोन दो मिल जाएगी, आप मिल जाते हो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, और आप नहीं मिलोगे तो टिकेगी नहीं, आपसे ही बल मिलता है उस हलचल को, आप साथ मिल जाओ तो हलचल के अनुबोधन हो जाता है, फिर मिलेगी नहीं, आप देख लोगे सी मन मागर हो जीता स्वर्ग। अभी महाराज संसार को जीता नहीं, जीत रहे हो, साधक हो, ये जीता नहीं तब तक साधक हो, साधक जब तुझे हो तब साधक हो, जब सिद्ध हो गए बोलो करो संग खूब करो, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, बस विजय में सिद्ध नहीं हो, अपने में सिद्ध हो जाओ अथवा ज्ञान में सिद्ध हो जाओ, ज्ञान में तो सिद्ध हो ही सकते हो, जानकारी है, जानकारी हम जानते हैं सर हो रही, जानकारी में सिद्ध हो तो मोज, अपने आप में सिद्ध हो तो मोज, आरंभ है अभी, उसमें सिद्धि हो जाने के बाद में सामने से तो मन होता है बिल्कुल। अरे भाई आ गई ना बात, देखो आपको तो हुआ कि नहीं पता नहीं, पेटी टुकड़ा सीख है ना, जब तो सीखता है तो वो अकल में तो बात आ जाती है, यही हाथ यहाँ धरना है तो हाथ धरते हैं तो वह नहीं धरा जाता, वो धरते सूख जाते, तब लगे बोला कि धागे न तेनाक दिन हो गए, धागी न तेनाक दिन ये आता है, इसमें धागी नहीं तेनाक दिन नहीं होता है, ऐसे आता जो होता है समझ में आ गई, अब बदल तक नहीं आता, फिर समझ में तो आ गई ठीक तरह, इस तरह से एक बोल निकलता है, परंतु जब बोल बजाने लगे वायन तो न आने पर भी क्या हाथ जाता है याद हो, तो था धिनता कित था धिनता कित था, तो था धिन वे समझ में तो आ गया, बजाने लगे नहीं आया, तो बजाने लगे नहीं आया तो अकल में तो बात आ गई, ये काम कम नहीं हुआ है, बड़ा भारी काम हुआ है, मूल चीज हाथ में आ गई, अब एक अंत बैठ करके खून कर हाथ में आ जाएगी, अब जू बजाओ जो हाथ में आ जाएगी, ऐसे ही ये मूल बात हाथ में आ जाए, काम मामूली नहीं है, आप जो याद रखो लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए तो इतना लाभ नहीं जितना इस बात में लाभ है, अरबों अरबों रुपया मिल जाए लाभ नहीं, पर तो आपको पैसों को बदले हुए छोड़ देना बताओ, तो बताओ क्या बहुत मूल्यवान बात है, बहुत कठिन है,
बहुत ही सुगम है, निकल जाओ बहुत है। कहीं तो श्रवणाया भी बहुत ही योग लग गया, उनसे तो हमने लिखा है कि बहुत से आदमियों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती। आप बताओ सुनने के लिए कितनी मिलती? श्रवणाया भी बहुत ही योग लग गया, सुनने के लिए भी बहुतों को तो नहीं मिलती, बहुत कम आदमियों को मिलती सुनने के लिए। तो दुर्लभ है तो कठिन है, और सुगम के भी है कि स्वतः सिद्ध है, लेकिन बनाना क्या करता है, आप वही रहते ही हुआ।
प्रवचन शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी बुधवार दिनांक 25/6 को प्रातःकाल हुआ। आगे महत्वपूर्ण प्रवचन उद्देश्य बदलना। त्रयोदशी गुरुवार 26 जून 1980 को हुआ था।
नरके पतन ऐसा भाव रखने वाले महान घोर यातना वाले अशुद्ध का अर्थ है घोर यातना, जब बहुत कर ज्यादा मात्रा में ऐसे घोर में दब जाए, बचाने से तक कोई ब्रह्मा जी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने खुद ने पकड़ लिया ना नरकों को। नरकों का दरवाजा क्या है कि काम नरकों का दरवाजा, वो काम ना आया कोई सा मिल जाए, इतना सा मिल जाए, इन मध्य में अलग दिन क्यों प्रयास समझ इधम मे सात इधम मे सात इच्छा काम शब्द था कामना में, कृपया ये मिल जाए ये मिल जाए, इतना और हो जाए, इतना और बढ़ जाए, इतना और मकान बन जाए, इतनी सी सामग्री आ जाए, इतना सा आराम हो जाए, इतना से एक पात्र हो जाए बिछाने के लिए, तो बड़ा अच्छा रहे। चलो लग गया था काम, अरे इच्छा न रखने पर भी चीज सब मिलेगी, निर्वाह की कोई सजा कोई बाकी नहीं रहेगा, और इच्छा करने से पूरी मिल जाए कभी मिलेगी ही नहीं, बिना इच्छा के जीवन निर्वाह की पूरी चीज मिलेगी कभी रहेगी नहीं, और इच्छा करने से कभी पूरी होगी नहीं जो ब्रह्मा जी हो जाएगी। ध्यान दिया नहीं बात पर, माना इच्छा न रखने से तो किसी चीज की कमी किंचित मात्र नहीं रहेगी, और इच्छा रखने से पूरी कभी नहीं होगी ब्रह्मा जी उम्र नहीं होगी, किसी बात बताओ, अरे उन्हें इच्छा का त्याग करना बस, काम इच्छा में त्याग का सुख आशा ही परम दुख मेरा सिंह परम सुख, सुख ऋतु के साथ परम सुख लगाया इच्छा ही परम दुख, जहां इच्छा हुई आशा हुई मिले तो महान दुख मिलेगा, मेरा सिंह परम दुख जैसे सारी कोई आशा कोई सारे कोई कामना नहीं, चाहिए ना चाहिए ना चाहिए नहीं, हमारे तो चाहिए हृदय से उड़ जाएगी, बाहर की परिस्थिति अनुकूल बन जाएगी, प्राय अनुकूल बनेगी, मेरी तो यहां तक धारणा है बिना प्रारब्ध के वस्तु मिलेगी, ऐसे लोग सकते हैं जिसके मन में धन का मूल्य नहीं है और धन का दुरुपयोग नहीं करता है और संग्रह करना नहीं चाहता है और पास में चीज हो जाए तो वो किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है, ये बात है जिसकी अंतःकरण में होगी नया प्रारंभ बन जाएगा उसके लिए नया, कितनी विचित्र बात है, कृष्णा रखेगा तो जो प्रारंभ है वो कितनी तंगी से मिलेगा, बहुत उद्योग करेगा इच्छा करेगा चेष्टा करेगा इधर उधर करेगा और ज्यादा इच्छा चोरी करेगा, कहीं डाका डालेगा, कहीं जबरदस्ती करेगा, कहीं कपट करेगा, कहीं धोखा देगा, कहीं विश्वासघात करेगा, तो नहीं हुआ होगा, कितना फर्क होगा, थोड़ा सा विचार करना है क्यों करो इच्छा भाई, हमारे दिया बहुत ठीक है, जो दे दिया था गुरु ने बहुत आनंद प्रण मत रहे अपने देव पराई चौपड़ी मत परसावे जीव, रूखी सूखी खाए मेरे ठंडो पानी पिए, आनंद कितनी मौजूद चारा संतुष्ट और गुंजाती तो गिम सदा समय सिद्ध हो असिद्ध हो जाए कृपया फिर धन्यवाद सब काम करके वो बने रहने हृदय सारा संतोष, अपने सात्विक उद्योग से वर्णाश्रम के अनुसार काम कर दिया उसको जो कुछ मिल जाए हृदय सारा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूर्य ब्रह्मचारी भगवान को सन्यासी अपने वर्णाश्रम के अनुसार सात्विक उद्योग जैसा कर लू और उस गाने पर जो मिल जाए वो विदृच्छा लाभ संतोषा लाभ है, उस विदृच्छा लाभ में संतोष बहुत ठीक मौज है, जैसी अवस्था जाए कि जरा राम ताई बिद रही है कि सीताराम 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 कही है कि भगवान का भजन करना है, इतनी सुगम इतनी सरल बात जीव बड़े शांति है आनंद में शांति है,
साधुओं को ब्राह्मणों को जरूर सावधान रहना चाहिए, खतरे भरा हुआ है। इस बात का ख्याल रखो, विधि क्या है, शास्त्र क्या कहता है, इसके अनुसार हमारा क्या कर्तव्य होता है, इस बात पर जरूर ख्याल रखो। सुबह लाभ होता है, नहीं तो भाई यही बात पतन की तरफ चल जाए। और आजकल तो महाराज देश बहुत ख्याल रखते थे, उनमें भी दशा दुर्दशा हो रही है। जिसमें तीर्थ में रहने जाए रहते चले जाए, उनमें तो बहुत ऐसी मांगना लेना करना मुंह दूर ज्यादा ही दूरी ज्यादा हमला कर तो लेना में शुरू कर ही देते हैं। साधु ब्राह्मण कम नहीं रहते, ऐसा देखा कहीं नहीं। राम 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 क्या बताऊंगा। जिसमें आजकल के जमाने में तो आ जाए किस तरह से अकड़ाओ पढ़ाओ कि पैसा आ जाए, बस काम हो तो भोग परमा एतावधि से निश्चित है। ये अंते काम होगा अन्याय अर्थ संचया, अन्याय गुरु धन संग्रह करते करते काम भोगार्थम पदन की तरफ चले जाएंगे। भाई जहाँ असत का आश्रय लिया पांच पदन की तरफ चला गया, पॉइंट बदल गया, हमारा लाइन बदल गई। जहाँ बिल्कुल एक परमाणु तत्व को प्राप्त करना है, कहीं दूसरे का हक आ गया और आ गया तो हमारी बड़ी बाधा लग जाएगी, अंतर्गत मेला हो जाएगा। ख्याल रखो भाई, चौहत्तर पचहत्तर की बात होगा, अधिक हमारे साथ हमारे पिताजी जी महाराज थे, हम आए थे यहाँ पर, तो यहाँ देगा तो स्वर्ग आश्रम फिर गए केला आश्रम में, इस बार इधर केला आश्रम बड़ा उचित देखा पहले पहले आश्रम। जिस दिन खास स्नान था संक्रांति का, उस दिन पंडित जी महाराज आज क्षेत्र में नहीं खाएंगे, आज क्षेत्र में रोटी नहीं खाएंगे, पैसे से पूरी लेकर हम दोनों खाएंगे। अब पैसे कौन से थे, आए हुए देश ही थे, वे कौन से कमा कर लाए थे, ये साधु नहीं सब। तब इतना ख्याल उस दिन किया था, हरिद्वार की बात है, फिर भी याद है। आज कहा जा रहा था, बहुत कम है आज भी रखते हैं। असत की इस तरफ वृत्ति होने पर बिल्कुल बुद्धि मारी जाती है, असत की तरफ चला ही चला जाता है। तो केवल सत की तरफ बुद्धि हो जाए तो उसका तो बस लाइन बदल जाएगी एकदम ही, आप साफ बुद्धि पैदा हो। नारायण 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 नारायण
नारायण अस्सी को
प्रकरण देगा जाए, प्रकरण में थोड़ा सा विवेचन है। सद्बुद्धि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्ति पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दृश्यस्य आत्मन्यथोमयि। ये दो श्लोक उपनिषदों में जैसे वेदांत का वर्णन है, ब्रह्मसूत्रों में जैसे वर्णन है, उस वर्णन के अनुसार ये सिद्धांत है। ये एक नई सीख बात है। गीता में जो सांख्य योग है, उस सांख्य योग का वर्णन है, वो बिल्कुल सबके अनुभव की बात है। भगवद गीता का उपदेश ऐसा दिया गया है तो जिसका सबको अनुभव हो जाए, अनुभव है वो मनुष्य मात्र का अनुभव है, ऐसे भगवद गीता का उपदेश है। तो गीता का सांख्य योग जिनको संन्यास कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, वो ज्ञान योग विचित्र ढंग का है।
वो ज्ञान योग सबके अनुरोध की बात है। तो पहले आरंभ ही भगवान ने ज्ञान योग किया है अशोचानंद सोचो को हम। तो 20 श्लोक है और जिसमें टीकाकार कहते हैं कि आत्म अनात्म का विवेचन है ये, परंतु 20 श्लोकों में आत्म अनात्म का शब्द नहीं है। ईश्वर है, जीव है, ब्रह्म है, माया है, चेतन है, जड़ है, ऐसा कोई नाम नहीं। जो शास्त्रीय परिभाषा में नाम आते हैं, दार्शनिक नाम आते हैं, ऐसा एक ही नाम है। ऐसे सतह आता है मानो जो प्रक्रिया की बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा नाम आ जाएंगे, सतह आएगा ही। खास करके इसमें विवेचन है शरीर और शरीरी का, देह और देही का, बस वो विवेचन खास जो कि सबका अनुभव है कि शरीर यहाँ मिलता है और यहीं रह जाता है, और शरीर वाला आता है और चला जाता है। तो शरीर और शरीर ये दो चीज है, खास इसका वर्णन है। इसी को सांख्य योग कहते हैं, सांख्य योग संन्यास कहते हैं इसी का नाम, इसको ज्ञान योग कहते हैं। गीता का संन्यास योग ये है, तद्विति प्रणिपातनाग ने पूछा है वो सांख्य योग उपनिषदों का शास्त्रों का है। गीता में दो श्लोक उनका आदर देने के लिए कहा है और कर्मयोग के विषय में कहा है, और उससे अगाड़ी वही सांख्य योग से होने वाला ज्ञान कर्मयोग से अपने आप हो जाता है ये बात कही। अगर तब स्वयं योग संसिद्ध कालेनाथ विंदती वो प्रकृति है। आपने पीछे से कहा ये सुगमता से ज्ञान कैसे हो जाए, ये गीता की बात, ये खास गीता की बात है। तो गीता में ज्ञान की बात बहुत सुगम बताई है, बड़ी सारी सरल बताई, जो मैं प्रायः कहता हूँ आप लोगों के सामने। ये सब संसार और शरीर ये सब नाश की तरफ जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है हरदम, और इसके जानने वाले का परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो नित्य निरंतर है जो का क्यों रहता है, और ये नित्य निरंतर जाता ही रहता है, ये खास है ज्ञान। अब इस ज्ञान का जो अनुभव है वो सबको है अनुभव, उस अनुभव को महत्व नहीं दे रहे हैं, उस पर अपने आप को स्थित नहीं कर रहे हैं, दृढ़ता से इस बात को पकड़ नहीं रहे हैं, ये गलती है। चलो सीधी बात, अपनी बात, घर की बात, अनुभव की बात, ठीक है, ऐसी बात है। जैसे अच्छे द्योयम अदायोयम अक्लेद्यो असोसिएट नित्य सर्वगत स्थानो रतलोयम सनातन अभ्युद्योयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात एवं विदित्वा एनम न सुमर से। ऐसा ये है, इस प्रकार को है जैसा तू जानना तो शोक नहीं कर सकता। तो है जैसा जानना है, इसमें उद्योग क्या है? विद्या गीता उद्योग नहीं मानती है, गीता है जो देख लो इसमें, परंतु अपने प्राय लोगों के मन में जरूरी है कि संसारिक काम छोटा हो तो उसमें भी कितना प्रयत्न करना पड़ता है, तो परमात्म तत्व प्राप्ति की नजर कितना ही प्रयत्न करें तब होगा, ये एक बात बैठी हुई है मन में। ये बहुत बड़ी भारी बात लग रही है, कहने से मानते हैं नहीं, स्वयं विचार करते हैं नहीं, तीसरा कोई विचार नहीं देता हमें, चाहे तो स्वयं आप विचार कर लो, स्वयं कहने से मान लो, लोग इसे अपनी सब रखता नहीं। अब आपको बताऊं सुगमता से ज्ञान कैसे हो जाए, तो जैसे मैं हूं तो अपना होने पर क्या ज्ञान किसको नहीं है? स्वाभाविक अपने सत्ता का ज्ञान है, और वो ज्ञान इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है, इतना पक्का है कि उस समान कोई है ही नहीं इतना पक्का। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अपना होनापन है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, इतना पक्का है। ऐसा नहीं होता है कि भी गाढ़ नींद आ जाने पर मैं नहीं रहता, फिर जागता हूँ तो होता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसा नहीं होता। गाढ़ नींद में मैं था, सपने में मैं था, जागृत में मैं, बालकपन में था, जवानी में मैं था, वृद्धावस्था में मैं हूँ, रोगी अवस्था में मैं था, निरोग अवस्था में मैं हूँ, बिल्कुल मूल अपड़ था उसका भी मैं था, पढ़ा लिखा भी मैं हूँ। तो अपना होनापन है जो का क्यों सब के अनुभव है। अब केवल ये बदलने वाले का साथ न देकर इससे अलग करके अपना अनुभव करना, ये सुगम तहसीलदार बढ़िया से बढ़िया आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, ये इसे अलग करके अपने मान लें। पर मानेगा ऐसा, ऐसे कैसे मान लें, ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर बहुत देरी लगेगी, आप देरी लगे तो आप भी मर जाओ, कठिन है तो कठिन मानो सा, आप भी मर बात तो इतनी बहुत सुगम। इसके समान सुगम कोई काम है ही नहीं, कितना सुगम काम है सीधा। मैं हूँ निरंतर रहने वाला, और शरीर इंद्रिया सब निरंतर बदलने वाली, निरंतर बदलने वाले से अलग मैं बदलना बदलने वाला हूँ। अगर अलग न हो तो बदलने का ज्ञान किसको हो? बदलने का ज्ञान जिसको हो रहा है वो बदलने वाला नहीं होता। अगर बदलने वाला वो होता तो बदलने का ज्ञान कौन करता? बदलने के बाद रहता कौन? बदल जाता, साथ साथ बदल जाता। तो बदलने का ज्ञान जिसको हो रहा है वो है अटल रूप से है, जो का क्यों है तो बदलने का ज्ञान हो रहा है। सब परिवर्तन हो गया, सबका ही परिवर्तन हो गया, मेरा नहीं, मैं जो हूँ उसका कोई परिवर्तन नहीं। ये जो बदलने वाला न बदलने वाला है, दोनों को मिला कर देगा अज्ञान, और वो अलग कर देगा ये ज्ञान। अरे अलग आपको अनुभव होता है, अलग अनुभव न होता तो बदलने का ज्ञान कैसे होता आपको? स्वाभाविक हो रहा, पर फिर भी मिला हुआ ही मानेंगे, और ये करने से होगा। आप बहुत दूर करेंगे, समान मनन ध्यान करेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, कांड बनाएंगे, तब होगा, तब हो जाएगा। मनुष्य मात्र जितने जीव मात्र ही परमात्मा की छत्र छाया में है, और परमात्मा है कल्प वृक्ष, इसके नीचे बैठ आप ऐसी कल्पना को ऐसे होगा तो वैसे ही होगा, आप ही वैसे ही है। और आप बोलोगे तो सीधी बात अभी हो गया, अभी हो गया, हुआ हुआ है, ये है पहले से उसको जानना है। तुम क्या जोड़ लेगा? गंगा जी बह रही है, आगे ले गया दीदी, तुम्हें उद्योग क्या करना पड़ता, परिश्रम क्या है, कितना सुगम है गीता। गंगा जी को देखने में तो परिश्रम पड़ता है, स्वयं को देखने में परिश्रम नहीं पड़ता, स्वयं तो देख ही रहा है, वही अपने हालता तो है एक मौजूद है, तो बदलना पड़ा मैं नहीं हूं, इतनी बात है। परिवर्तनशील है तो आप इतने बैठे हैं, आप ध्यान दे कर सुने किसी बात को, हो ये शब्द में कहता हूं, आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपकी वस्तुएं, ये अलग है कि एक है आप, और आप और आपका शरीर, आप और आपकी इंद्रियां, आप और आपका मन, आप और आपकी बुद्धि, आप और आपके प्राण, ये आप एक है कि दो है? ये दो बिल्कुल दो है। तो जो आपके कहलाते हैं वे आपसे अलग है, वे परिवर्तनशील है, उनमें सब में परिवर्तन आया, और आप में परिवर्तन आया क्या? अनेक परिस्थितियां हुई, आप भी अनेक हुए क्या? संपूर्ण परिस्थितियों में आप एक रहे, सब वस्तुओं के बदलने पर आप एक रहे, सब अवस्थाओं के बदलने पर आप एक रहे, अनेक संयोग योग होने पर आप एक रहे, अब वो बदलने वालों का स्रोत आप एक रहे, उसमें स्थित हो जाइए क्या? और भगवान के साथ मिल जाए ये अज्ञान। बालक बने मैं बालक हूँ, जवान हूँ मैं जवान हूँ, आप मिल गए उसी का ये अज्ञान। आप तो है जैसे वैसे कर रहे थे, बालकपन में दूजा तो नहीं हूँ, वही हूँ जो बालकपन में था वही आज हूँ, ये बदलने वाला मैं नहीं हूँ। अब इसे अलग करके अनुभव करे, कब करे, अभी अभी इसी क्षण है, तो काम नहीं जो मुझे क्षण का जरूरी थी कोई काम आवश्यक नहीं, इसे क्षण ही बदलने वाले थे, न बदलने वाला हूँ न अलग हूँ, ये अनुभव है। पर यही ज्ञान है, इस बात को मान लें, कृपा कर दिया ये बात है। यज्ञ ज्ञा तुरा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और नहीं माने तो महाराज आप कितना ही कर लो हो गए, कितना ही ध्यान लगा दें, कितना ही प्राणायाम कर लें, कितने तीर्थ कर लें, कितने व्रत कर लें, बड़े बड़े काम कर लें, बहुत उद्योग कर लें, जब तक इस बात को नहीं माने तो बोध नहीं होगा। और ये पहले मान लो, अभी अभी हो जाएगी, एकदम बात की है, करके देख लो। उस बात से जिसके जिस ज्ञान के होने पर वो नहीं होगा, फिर वो कैसे हो जब अलग है ही पहले से, और आपका अनुभव है अलग होने का, उस भी अलग का अनुभव कर लेने, फिर वो कैसे होगा, ये पास मिल जाएगा। मैं और मेरी परिस्थिति चीज है, मैं और मेरी वस्तु, मैं और बीज है, हमारी अवस्था हम दूसरे हैं, हमारी फुलनार हम दूसरे हैं, हमारे बनबुद्धि इंद्रियां अलग रूप से हम अलग हैं। अब अलग का ज्ञान हो गया तो इसमें पूछम हो गया, अभी आपने पत्र रखा है साथ के वक्त है तो नहीं, अब हम शंका करो, आपके शंका हो जाए वो पूछ। न स्वभाव देख लगा आप चाहते नहीं हो, परंतु कृपानाथ मेरा कहना मान लो, आपको क्या बाधा लगती है, नहीं लगाना चाहते मान लो, अब मानने से जी में लग जाएगा। आपकी ये बाधा लगी है कि हमें दीखेगा तब मानेंगे, हम जब मानेंगे तब दीखेगा, प्रेफरेंस नहीं है। आप रुपये देख हम दी जाएगा तो मानेंगे, हम कहे मानो वो दिख जाएगा, ये होगा देर वगैरह की बात। आप पूछो हाँ गुच्छी है, और मानो केवल कह देगी ये ऐसा नहीं मानता हूँ, माना मानो आप जान करके साफ आप पूछना अगर बता देंगे हाँ ये साहब हाँ ठीक है। कुछ नहीं फालतू बात, बिल्कुल फालतू बात, बात समझ गई नहीं। कोई और धर्म काम हो तो लेन देन नहीं है, कुछ नहीं बुझे ही नहीं। मानो ये बात देखो, ये जैसे कंबल है, एक कंबल और मैं एक हूँ दो है, बड़ा ऐसे आपका आपका मन, आप और आपकी बुद्धि, आप और आपका शरीर, आपके प्राण और आप, ये दो है कि एक दो है ना, फिर वो मान लिया तो मैं जानने वाला हूँ, ये जानने वाले वाले, और जानने में आने वाला मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, जानने वाला हूँ हूँ हूँ, ये माना इतने। जानने में आने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, मैं और मेरा दो होता है। प्रत्येक आदमी भेड़ बकरी का पूछा जाए कि तुम और सभी बकरियां एक हो गए थे, जैसे मैं उठे तो बकरी अलग है, मैं अलग हूँ, हमारी बकरी है, मैं बकरी थोड़ा ही, मैं बकरी उनमोह हो गया, मेरी बकरी ज्ञान हो गया, ऐसे मैं शरीर हूँ अज्ञान हो गया मोह हो गया, और मैं शरीर नहीं हूँ ज्ञान हो गया। इतनी है लंबी छोड़ी बात है नहीं, अब आप माने न माने आप मर्जी है।
मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरा विचार, मेरी अवस्था, मेरी परिस्थिति आप कहते हो, और फिर उसका मिल गया तो नट ऐसा हो गया, तूल हो गया, नट बहुत कुछ हो गया, फिर रेजी हो गया, तू रूप क्या समझ गया सही हो रही। तो कहने समय तो मान लेंगे, और समझ नहीं, और समझ नहीं मानेंगे, पैसा पैसा मिला देंगे, गेहूं साफ करे ऐसे करके कंकर निकाल दे, कंकर फेंक दे, पर वो निकालने का कंकर फेंकता रहता, उससे होगा जो जिन गेहूं में से कंकर निकाले उनमें पीछे कंकर डालता रहे, फिर निकालते रहे, फिर उसी में डालता रहे, उम्र भर सीन हो अखबार फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया, मिला भाई नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। ऐसे भी सोचते समय, सुनते समय हाँ सही जो मैं दू हूँ, व्यवस्था परिस्थिति और मैं दू है, और सब एक मिल जाते तो समझा लेते, आपके अनुभव न हो बिल्कुल गुला मिला जीत है, तो भी तो दी को भरे गुला मिला नहीं, पहले गुला मिला दीखता था, सत्संग के समय अलग अलग दिखने लगा, तो सच्ची बात अलग अलग दिखने लगा, ये है मिल जाते पर होने से नहीं अलग नहीं होती, इतनी आ जाती थी। तो फिर नहीं लगता है तो आप बता क्या लगती बताओ, अब बताओ बाधा क्या है, बोलो बात हो, फर्क नहीं लगता है, मैं आप मत बोलो, आप वो बात फालतू होती है, फर्क नहीं लगता है, जिधर सुख हो गया बस इतनी का है, मेरा मोह जान गया, फर्क ये है वो लक्षण पूरे चित्तप्रज्ञ के और पुणातीत के भगवत भक्त के, वो लक्षण पूरे के पूरे मेरे में आवे, ये अगर आप मानोगे तो कभी आने के नहीं, बिल्कुल असल वस्तु प्रिय लगती है, ये बाधा आई तो असल प्रिय किस को लगता है, मन को लगता है, बुद्धि को लगता है, तुम्हारे को लगता है, ये बताओ तुम्हें तेरी क्या आ रही है, असल वस्तु प्रिय किस को लगता है, तो मन को लगता है, तुम्हें इंद्र देव जाति को लगेगा ही, तुम ये बात सजातीयता में आपस में होता, ईदगाह गुणागुण ईद बर्तन थे इतना पुराने सब्जी थे, नारायण 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 नारायण, इस पर विचार करो, बाधा लगती है मेरे पास लाओ,
बताइए।